दोस्तों SBS हिंदी पर आज बात करते हैं भारत से ऑस्ट्रेलिया की मुलाकात पर आई साहित्यकार और मोटिवेशनल स्पीकर नुपुर जायसवाल जी से। नुपुर जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
नमस्ते अरिता।
नुपुर जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका ऑस्ट्रेलिया का जो प्रवास है वो कैसा रहा?
बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और खूबसूरती में तो इसका कोई मुकाबला है ही नहीं। मेरे ख्याल से सारे लोग, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इसे आकर उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस नहीं होगा। और उसके साथ साथ यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग, सब कुछ काबिल तारीफ।
नुपुर जी, आप एक कवियत्री हैं, लेखिका हैं, बहुत से समाचार पत्रों के साथ, साहित्य संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप ये बताइए कि साहित्य क्षेत्र किस तरह से बदल रहा है, खास करके अगर महिला साहित्य की बात करें तो आपकी क्या टिप्पणी होगी?
मुझे ये लगता है कि साहित्य जो है उसको, हालांकि महिला साहित्य और भी ऐसे कई एक हमारे विभाग हो गए हैं जिसमें हम बांट करके उसको देखते हैं या उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो साहित्य हर लेखक या हर रचनाकार का वो उसके अनुभव क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। तो जाहिर है कि अगर महिलाएं होंगी तो उनके अनुभव क्षेत्र से जुड़ा होगा। और कुछ समय पहले ऐसा हम लोग देखते थे कि महिलाओं का जो अनुभव क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र था, वो थोड़ा सीमित था। ज्यादातर हिंदुस्तान की महिलाएं जो हैं वो अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर, उसमें ही सीमित रहती थी। तो उनका लेखन भी अगर हम देखेंगे तो वो उसी से जुड़ा हुआ पाया जाएगा, और जिसके कारण कई बार उनकी आलोचना भी की जाती है और महिला लेखन करके उसे एक बल्कि हाशिए पर डाल दिया जाता है कि ठीक है, ये लोग शौक पूरा करने के लिए कुछ लिखते रहती हैं, अच्छा है, शाबाशी देते हैं और चलते रहिए। पर जो हमारी मेन स्ट्रीम है, जो हमारा मुख्य धारा में जो लोग हैं, वो ज्यादातर लेखकों की ओर, एक साहित्यिक आलोचकों का, पाठकों का भी काफी हद तक एक रहा है रुझान कि ये मेन स्ट्रीम है। और ये महिला लेखन कहते ही हम शायद उसको एक अलग कैटेगरी में डाल देते हैं। पर अब मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका अनुभव क्षेत्र बढ़ा है, कार्य क्षेत्र बढ़ा है, तो अब उनकी रचनाओं में भी वो झलकता है और आप उसमें बहुत सारी वो चीजें पा सकते हैं जो आप एक पुरुष लेखन, अगर हम कह सकते हैं, तो उसमें भी मिलता है। और जाहिर है कि हर लेखक की अपनी दृष्टि होती है, तो वो हर महिला की एक ही दृष्टि होगी, ये कोई जरूरी नहीं है।
तो अब आप ये बताइए कि जिस तरह से अलग अलग विषयों की बात हो रही है, तो आपके पसंदीदा विषय कौन से हैं?
मुझे खासतौर से ऐसी कोई भी बात जो कि ह्यूमैनिटी को एज अ होल, वो चाहे किसी एक महिला या पुरुष या देश या विदेश, उस पर आधारित नहीं होकर के जो सामान्य तौर पे लोगों को प्रभावित करती, उनकी भावनाओं के ऊपर वो कितने हद तक भावुक हैं या कहाँ कहाँ पर वो बिल्कुल ही इनसेंसिटिव हो जाते हैं। कई बार हम लोग अपने जीवन में कई चीजों को रोजमर्रा देखते देखते इनसेंसिटिव हो जाते हैं, तो उन बिंदुओं को एक बार उभारना कि ताकि लोगों की जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो एक बार हम फिर से छू सकें, ये मेरा प्रयास थोड़ा उस ओर रहता है।
और क्या यही कारण है कि आप साहित्यकार बनने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं?
शायद कह सकते हैं, हालांकि ये मैंने सोचा नहीं था। कई बार लोग पूछते हैं कि ये दो बिल्कुल अलग फील्ड्स में आप कैसे काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अलग फील्ड्स नहीं है, सिर्फ अभिव्यक्ति का जरिया अलग है। एक जगह आप बिल्कुल डायरेक्टली किसी को कह रहे होते हैं देखो ये हमें अफेक्ट करता है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, या ह्यूमन रिलेशंस को हम लोग इम्प्रूव करने के लिए तरह तरह की बातें उन्हें बताते हैं, तो वो एक डायरेक्ट अप्रोच है। और ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच है जहां पर आप सीधे सीधे किसी को नहीं कहते हैं कि देखो ये करो ये नहीं करो, पर कहीं ना कहीं अपनी बातों को घुमा फिरा करके उसी मकसद से उनके सामने रखते हैं कि कोई जो भी उसे पढ़ने वाला है उस कहीं पर वो बात उसको छू जाए, उसकी भावनाओं को कहीं पर स्पर्श करे।
नुपुर जी, अब बात करते हैं आपकी पुस्तकों और रचनाओं पर, तो आपकी रचनाओं में से आपकी पसंदीदा रचनाओं के बारे में बताइए।
ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है कि आप किसी एक रचना को चुन पाए, क्योंकि हर लेखक जब लिख रहा होता है, मुझे लगता है जो उसकी ताजा तरीन होती है वो उसको बेस्ट लग रही होती है कि ये शायद अभी मैंने बहुत अच्छा लिखा है। पर हाँ, कुछ एक ऐसी रहती हैं जरूर जो बहुत समय तक आपको प्रभावित, खुद को ही प्रभावित करती रहती हैं। एक जो मुझे बहुत अपील करती है, उसका जो विषय है वो मुझे लगता है कि ये ऐसा विषय है जिस पर हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, धर्म। तो धर्म जो शब्द है उसको इतने तरीके से लोगों ने तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है कि उसकी जो वास्तविकता है वो पूरी तरह लुप्त हो चुकी है। तो आज तो हम जिसे धर्म कहते हैं वो तो धर्म है ही नहीं, आज हम संप्रदाय को धर्म का नाम देते हैं, जबकि हिंदी भाषा के हिसाब से अगर देखा जाए तो धर्म शब्द जो है वो एक व्यक्ति की जो प्रकृति है, जैसे आग का धर्म क्या होता है, आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है नीला करना, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसका धर्म है। उसी तरह मानव का एक धर्म है, उस तरीके से धर्म शब्द का इस्तेमाल किया गया था और किया जाना चाहिए पर किया नहीं जा रहा है। अब उसको संप्रदाय का इक्विवेलेंट बना करके और उसी तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उस पर मैंने एक रचना लिखी थी, इसका शीर्षक है यहाँ सवाल मत उठाना। यहाँ सवाल मत उठाना, सवाल उठाते ही यहाँ लोग चौखटे में जड़कर किसी कील पर टांग दिए जाते हैं। यहाँ सवाल मत उठाना, सवाल उठाते ही यहाँ लोग चौखटे में जड़कर किसी कील पर टांग दिए जाते हैं। ईसा, बुद्ध और नानक की तरह कुछ खतरनाक लोग, ईसा बुद्ध और नानक की तरह कुछ खतरनाक लोग जो धर्म और ईश्वर पर करते थे सवाल, टंगे हुए हैं आज घर घर में कीलों पर, क्योंकि धर्म को सवालों से नफरत है और तस्वीरें कभी सवाल नहीं पूछती, सिर्फ बुद्ध की तरह टंगी रहती हैं और चलती रहती है धर्म की दुकान बदलते हुए साइन बोर्डों के तले।
बहुत खूब, बहुत ही खूब। नुपुर जी, आजकल जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है हर एक क्षेत्र में, उससे साहित्य भी अछूता है, तो आप बताइए कि क्या ये जो नया ट्रेंड है, जो नया प्रवाह है, वो साहित्य के लिए लाभदायी होगा या फिर घातक होगा?
दोनों ही पहलू हैं इसके, क्योंकि एक तरफ तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो आसानी से लोगों को उपलब्ध है और उस पर लोग अपनी रचना सामने रख सकते हैं। रचनाकार का उद्देश्य ही होता है कि वो लोगों तक पहुंचे, अपनी बात पहुंचाए, तो उसको बड़ी आसानी से ये एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। चाहे अलग अलग सोशल मीडिया पर ही मैं देखती हूँ कि लोग अपनी रचनाएं डालते रहते हैं, तो जहाँ एक ये आसानी है वहीं पर ये आसानी कई बार उस बैरियर को तोड़ देती है जहां पर हम क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, जहां पर, क्योंकि किसी भी संपादक के जरिए जब आप नहीं जा रहे हैं तो आपके हिसाब से हर रचना आपकी पठनीय है और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो कई बार निम्न स्तरीय रचनाएं भी लोग प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो वहां पे अब ये पाठक की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो खुद से चुनाव करे कि किसको वो पढ़े किसको वो नहीं पढ़े। तो यहाँ पर, और मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं रचनाकार का भी अपना दायित्व होना चाहिए कि वो ये सोचे कि हर रचना लिखते के साथ ही तुरंत प्रकाशित, जो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का लोगों के अंदर स्वभाव बढ़ता चला जा रहा है, वही चीज यहाँ पर भी उसको कई बार प्रभावित कर देती है और वो जो एक स्क्रीनिंग से जाना चाहिए था, एक पहली बार तो अपनी खुद की स्क्रीनिंग से भी जाना चाहिए। तो मुझे तो ये लगता है कि हर रचनाकार को रचना लिखने के बाद थोड़ी देर उसको छोड़ देना चाहिए, कुछ दिनों तक उसको छोड़ देना चाहिए, और उसके बाद जब वो उसको पढ़ता है फिर भी वो उसको अपील करती है या उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश उसको दिखती है, तो उस प्रोसेस के जरिए गुजरने के बाद ही फिर वो उसमें से चुनिंदा रचनाओं को अगर वो लोगों के सामने रखेंगे तो वो लोगों के लिए भी बेहतर होगा और उनके खुद के लिए भी बेहतर होगा कि उनकी रचनाएं उनके अपने ही संपादन के प्रोसेस के जरिए कम से कम गुजरेंगी।
और जाते जाते आपसे एक और विनती कि आप हमारे श्रोताओं के लिए एक और प्रस्तुति अगर दें तो।
चलिए, तो एक और रचना मैं इसी तरह की सुनाती हूँ, और ये है बच्चा और टीचर। आज क्लास में टीचर ने पढ़ाया है, हिंदुओं का धर्म ग्रंथ गीता है, मुस्लिमों का कुरान और ईसाइयों का बाइबल। इसमें भी कहीं ना कहीं धर्म की चर्चा आ ही गई है। आज क्लास में टीचर ने पढ़ाया है, हिंदुओं का धर्म ग्रंथ गीता है, मुस्लिमों का कुरान है और ईसाइयों का बाइबल। ये मंदिर जाते हैं, वे मस्जिद और वे गिरजा। बच्चा जान गया है कि सब अलग अलग हैं। वह गहरी सोच में है, इतने दिनों से पता ही नहीं चला कि क्या अलग है। वह गहरी सोच में है, उसे अब भी नहीं पता कि क्या अलग है। हाथ, पैर, कान, आंख एक ही जैसे हैं। कल खेल में जब घुटने छिल गए थे तो तीनों के अंदर से लाल खून ही छलका था। बच्चा गहरी सोच में है। टीचर अगला पाठ पढ़ा रही है, ये भारत, ये पाकिस्तान, ये चीन, ये बर्मा। बच्चे को नक्शे रटने हैं। बच्चा गहरी सोच में है, आखिर ये टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनाई किसने, इंसान ने? पर टीचर तो कहती है वे सब अलग अलग हैं। भगवान ने, पर टीचर तो कहती है कि वे भी अलग अलग हैं। बच्चा परेशान है, टीचर उसे सवाल नहीं पूछने देती, खुद ही सवाल बनाती है, खुद जवाब बताती है, बच्चे को बस रटना है। बच्चा परेशान है, वह गहरी सोच में।
बहुत ही खूब, सही में एक विचारदायी सोच के साथ आप इस कविता को यहाँ पे पूर्ण कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप SBS हिंदी आई और हमारे साथ बात की।
शुक्रिया हरिता, आपने मुझे ये मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।